नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा भव्य समापन। 7 स्वर्ण पदकों के साथ बिहार का सराहनीय प्रदर्शन। बेगूसराय से दिल्ली जा रही एक निजी बस में लखनऊ के पास आगलगी की घटना। 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की झुलसने से मौत। पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश के जनजातीय परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी रहा सबसे गर्म स्थान। अब समाचार विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज अंतिम दिन है। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में शाम 6:30 बजे भव्य समारोह के साथ इन खेलों का समापन होगा। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण सहित 149 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। वहीं हरियाणा 35 स्वर्ण समेत कुल 107 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और राजस्थान 22 स्वर्ण के साथ 55 मेडल जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। एक रिपोर्ट।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शुरुआत के दिन अगर महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के खिलाड़ियों के नाम रहे तो अंतिम चरण हरियाणा के नाम रहा। कल हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स में एक के बाद एक पदकों की झड़ी लगा दी और उम्दा खेल से राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। मणिपुर, झारखंड और बिहार के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी प्रशंसनीय रहा। मणिपुर ने मार्शल आर्ट थांगटा में 7 पदक जीते। झारखंड ने बालक फुटबॉल में फाइनल में ओडिशा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बिहार की खुशी यादव ने 2000 मीटर के स्टीपलचेज में अपने राज्य को स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं 2 स्वर्ण पदक थांगटा में जीतकर पदक तालिका में बिहार ने बढ़ोतरी की। रंगारंग समापन समारोह में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई गणमान्य लोग भाग लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तर के अधिकारियों BLO को जल्द ही मानक पहचान पत्र जारी किए जाएंगे ताकि वे सुचारू रूप से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर सकें। श्री कुमार ने नई दिल्ली में बिहार, हरियाणा और दिल्ली के बूथ स्तर के अधिकारियों, निरीक्षकों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के लिए 2 दिन के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बूथ स्तर के अन्य अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण में बिहार के 300 से अधिक BLO भाग ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बरसात के मौसम में नदियों से बालू के उत्खनन पर प्रतिबंध के बावजूद विभिन्न विभागों में विकास संबंधी निर्माण कार्य बाधित नहीं होंगे। पटना में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार का कोई भी विभाग संबंधित जिले के जिलाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी से बरसात के दिनों में अपनी परियोजनाओं के लिए बालू के खनन और भंडारण का लाइसेंस जारी करवा सकता है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के नियमों के अनुसार 15 जून से राज्य की सभी नदियों में बालू उत्खनन बंद कर दिया जाता है। बेगूसराय से दिल्ली जा रही एक निजी बस में लखनऊ के PGI इलाके में आग लग गई। इस घटना में 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की झुलसने से मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी मृतक यात्री बिहार के हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में शीघ्र ही पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार योजना के तहत इसी वर्ष प्रदेश के 1,500 जनजातीय परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, जमुई और बांका जिले जनजातीय बहुल जिले हैं। इन क्षेत्रों में लाभुक परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान श्री गांधी दरभंगा में आयोजित शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में दलित और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने बताया कि श्री गांधी का पटना में भी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय युवाओं को माई भारत नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में नामांकित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार यह राष्ट्रव्यापी आह्वान युवाओं को राष्ट्रीय आपातकालीन स्थितियों और संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस पहल का लक्ष्य एक प्रशिक्षित और सतर्क स्वयंसेवक बल तैयार करना है जो प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, सार्वजनिक आपात स्थितियों और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में नागरिक प्रशासन की सहायता कर सके। स्वयंसेवक के रूप में इसमें शामिल होने के लिए माई भारत के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है। ग्रामीण कार्य विभाग ने लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों में सारण जिले के मढ़ौड़ा कार्य प्रमंडल के 2 तत्कालीन अभियंताओं केशव सहनी और परमेश्वर मेहरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग के अनुसार जांच में आरोपी अभियंताओं पर मनमाने ढंग से भुगतान करने, बिना स्वीकृति पथ निर्माण और योजनाओं के नियमों के उल्लंघन के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। इधर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने पश्चिम चंपारण जिले के बगहा 2 के अंचल अधिकारी और भागलपुर जिले के जगदीशपुर अंचल के राजस्व अधिकारी के निलंबन का आदेश जारी किया है। इन दोनों अधिकारियों पर विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री को गलत जानकारी देने का आरोप है। वहीं वैशाली के जिलाधिकारी ने हाजीपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सुबोध कुमार वर्मा के खिलाफ घूस लेने के आरोप की जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पुलिस ने एक साइबर कैफे पर छापेमारी कर मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया समेत उत्तर पूर्व भागों के जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग के जिलों में गर्म और आर्द्र दिवस रहने की संभावना है। इस बीच गर्मी को देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों से धूप में बाहर नहीं निकलने, समय समय पर पानी और ORS का घोल पीने तथा आवश्यकता पड़ने पर शरीर को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलने की अपील की है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने एक विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के निवासी कैप्टन विक्रम बत्रा ने भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा की यूनिट को द्रास सब सेक्टर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत शिखर पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 7 जुलाई 1999 की रात को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद कैप्टन बत्रा पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे दुश्मन की ओर आगे बढ़े और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आक्रमण किया। कैप्टन बत्रा की बहादुरी की बदौलत भारत ने पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान उनका एक रेडियो संदेश यह दिल मांगे मोर बाद में कारगिल युद्ध का कैच लाइन बन गया।
Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can allow us. Ye dil mange mor.
उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत की एक तकनीकी टीम आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत 1267 प्रतिबंध समिति में अपना मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कराना और इस संगठन को पाकिस्तान द्वारा मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 28 मई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए नोडल संस्था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये परीक्षा प्रदेश के 11 शहरों के 241 केंद्रों में आयोजित होगी। इस वर्ष बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए 130,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पूर्व रेलवे ने मालदा डिवीजन के अंतर्गत भागलपुर जमालपुर सेक्शन में सबवे निर्माण को लेकर 17 मई को 7 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया है। इस दौरान कुछ रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी, जबकि कई रेलगाड़ियों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। भागलपुर जमालपुर पैसेंजर और जमालपुर क्यूल मेमू पैसेंजर रद्द कर दी गई हैं। इधर पश्चिम बंगाल के संतरागाछी में चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के मद्देनजर 17 मई को पटना शालीमार दुरंतो एक्सप्रेस पटना से अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देर से प्रस्थान करेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है पानी के लिए पाक की गुहार। पाकिस्तान ने जल संसाधन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कहा भारत सिंधु जल संधि पर विचार करे। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर लिखा है पस्त पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत से पुनर्वाचार की लगाई गुहार। दैनिक भास्कर लिखता है माइक्रो फूड इंडस्ट्री लगाने में बिहार को देश में मिला पहला स्थान, एक साल में 10,270 इकाइयों को मिली स्वीकृति। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह और आपदा प्रबंधन विभाग के निरीक्षण के बाद दिए बयान पर लिखा है पुलिस पर लोगों का पूरा भरोसा, उस पर खड़ा उतरें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा भव्य समापन। 7 स्वर्ण पदकों के साथ बिहार का सराहनीय प्रदर्शन। बेगूसराय से दिल्ली जा रही एक निजी बस में लखनऊ के पास आगलगी की घटना, 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की झुलसने से मौत। पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश के जनजातीय परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 2-2 लाख रूपये की राशि दी जाएगी। और पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी रहा सबसे गर्म स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।